पंचम अध्याय संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। हमारे देश में संस्कृत का पठन पाठन दो प्रकार से होता है, एक तो पाठशालाओं में, दूसरे वर्तमान शिक्षा प्रणाली में। पाठशालाओं में संस्कृत की कक्षाएं प्रथमा से आरंभ होती हैं और आचार्य तक चलती हैं। प्रथमा कक्षा में छात्र प्रारंभिक विद्यालय तक मातृभाषा का अध्ययन करने के बाद प्रविष्ट होता है और इसीलिए प्रथमा को जूनियर हाई स्कूल के समकक्ष माना जाता है। इसके पश्चात पूर्व मध्यमा हाई स्कूल के समकक्ष और उत्तर मध्यमा इंटर के समकक्ष की परीक्षाएं हैं। शास्त्री और आचार्य की उपाधियां क्रमशः बीए और एमए के समान हैं, किंतु संस्कृत के ज्ञान की दृष्टि से कहीं ऊंची उपाधियां हैं। पाठशालाओं में ज्ञान विज्ञान के आधुनिक विषयों का भी अध्यापन होता है। संस्कृत का अध्यापन यहाँ पर बड़े गहन रूप में होता है और अधिकतर विषयों का अध्यापन संस्कृत के ही माध्यम से होता है। उत्तर प्रदेश में ये सभी पाठशालाएं वाराणसी संस्कृत विश्वविद्यालय से संबद्ध हैं। वर्तमान शिक्षा प्रणाली में संस्कृत का अध्यापन विभिन्न राज्यों में विभिन्न कक्षाओं से प्रारंभ होता है, किंतु प्रारंभिक विद्यालयों में कहीं पर भी संस्कृत का अध्यापन नहीं होता। यह ठीक भी है, क्योंकि प्रारंभिक विद्यालयों में छात्रों को सर्वप्रथम मातृभाषा का अच्छी तरह से ज्ञान कराना चाहिए। मातृभाषा के ज्ञान के आधार पर संस्कृत का अध्यापन और अध्ययन सुगम हो जाएगा। उत्तर प्रदेश में संस्कृत का पठन पाठन छठी कक्षा से प्रारंभ होता है। छठी कक्षा से लेकर एमए कक्षा तक पाठ्यक्रम में उत्तर प्रदेश में संस्कृत का एक स्वतंत्र वैकल्पिक विषय के रूप में महत्वपूर्ण स्थान है। संस्कृत शिक्षण के तीन स्तर। आधुनिक विद्यालयों में संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से हम शैक्षिक स्तरों को तीन वर्गों में रख सकते हैं। प्रथम प्राथमिक स्तर, द्वितीय मध्य स्तर, तृतीय उच्च स्तर। प्रारंभिक स्तर से यहाँ पर प्रारंभिक पाठशालाओं का भ्रम नहीं होना चाहिए। प्रारंभिक स्तर का यहाँ पर तात्पर्य संस्कृत शिक्षण के प्रारंभिक स्तर से है और इस स्तर में हम कक्षा 6, 7 और 8 रख सकते हैं। मध्य स्तर में माध्यमिक कक्षाएं अर्थात 9, 10, 11 और 12 आ सकती हैं तथा उसके पश्चात उच्च स्तर आता है और उच्च स्तर पर विश्वविद्यालय की अंतिम परीक्षा तक हो सकती है। उपर्युक्त तीनों स्तर पर संस्कृत शिक्षा के उद्देश्य समान नहीं होंगे। यहाँ प्रत्येक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों का उल्लेख किया जा रहा है। प्रारंभिक स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। प्रारंभिक स्तर पर अर्थात कक्षा 6, 7 और 8 के छात्र बाल्यावस्था के अंतिम भाग में या किशोरावस्था में पदार्पण करने की तैयारी में रहते हैं, जहां पर मानसिक दृष्टि से उनके मन में बड़ी उथल पुथल मची रहती है। वहां पर उन्हें उपयुक्त आदर्शों की आवश्यकता भी पड़ती है। संस्कृत साहित्य ऐसे आदर्शों से भरा पड़ा है, अतः यदि छात्रों को उचित प्रेरणा प्रदान कर दी जाए तो संस्कृत भाषा को वे बड़े चाव से पढ़ेंगे। किंतु यहाँ पर यह ध्यान रखने की बात है कि छात्र इस समय संस्कृत को प्रारंभ करते हैं, अतः उनसे कुछ अधिक आशा नहीं करनी चाहिए। इस स्तर पर तो इतने से ही संतुष्ट हो जाना चाहिए कि छात्र सरल संस्कृत को पढ़ सके व उसे समझ सके। इस स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य संक्षेप में इस प्रकार हैं। प्रथम, छात्रों को इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत भाषा में लिखें और लिखे हुए सरल गद्य खंडों को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकें। द्वितीय, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे सरल संस्कृत श्लोकों का शुद्ध उच्चारण करते हुए पाठ कर सकें। तृतीय, उन्हें कुछ महत्वपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ करने की प्रेरणा देना। चतुर्थ, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे संस्कृत के कठिन से कठिन गद्य खंडों एवं श्लोकों के मुद्रित रूप को देखकर उन्हें ठीक ठीक अपनी पुस्तिकाओं में लिख सकें। पंचम, छात्रों में यह योग्यता भी उत्पन्न करना कि वे कंठस्थ किए हुए श्लोकों को उनके मुद्रित रूप में देखे बिना शुद्ध शुद्ध लिख सकें। षष्ठ, उन्हें श्रुतलेख लिखने का अभ्यास कराया जाना चाहिए। सप्तम, उन्हें इस योग्य बनाना कि वे मातृभाषा के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कर सकें। अष्टम, संस्कृत के सरल गद्य खंडों एवं सरल श्लोकों को समझने की योग्यता प्रदान करना। नवम, छात्रों को यह योग्यता प्रदान करना कि वे आवश्यकता अनुसार सरल संस्कृत वाक्यों एवं श्लोकों का मातृभाषा में अनुवाद कर सकें। मध्य स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। मध्य स्तर पर आने वाले छात्र प्रारंभिक स्तर अर्थात कक्षा 6, 7, 8 में संस्कृत को पढ़ चुके होते हैं। उनमें यह योग्यता आ जाती है कि वे संस्कृत के सरल गद्य खंडों एवं श्लोकों को शुद्ध शुद्ध पढ़ सकें। इस स्तर पर छात्रों को संस्कृत साहित्य का भी परिचय देना चाहिए, किंतु भाषा की शिक्षा इस स्तर पर भी महत्वपूर्ण रहेगी। इस स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य इस प्रकार हैं। प्रथम, संस्कृत के सरल ही नहीं कठिन गद्य खंडों को उचित विराम एवं शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़ने की क्षमता प्रदान करना, जिससे छात्र संस्कृत भाषा में लिखे हुए बड़े से बड़े वाक्यों को भी उचित अनुवंतियों में विभक्त करके पढ़ सकें और कहीं ऐसा ना हो कि वे अस्ति गोदावरी तीरे विशाला शालमली तरु के स्थान पर अस्ति गोदावरी तीरे विशाला जैसा पढ़कर गद्य खंड को निरर्थक कर दें। द्वितीय, संस्कृत श्लोकों को उचित लय मात्रा एवं विराम का ध्यान रखकर पढ़ने की योग्यता प्रदान करना, जिससे वे मालिनी शिखरणी द्रुत विलंबित इंद्र वज्रा भुजंग प्रयात आदि छंदों के ठाठ में अंतर कर सकें। तृतीय, संस्कृत के सरल साहित्य से छात्रों को परिचित कराया जाए, जिससे वे संस्कृत साहित्य के अक्षय कोश के कुछ रत्न स्वयं प्राप्त कर सकें और आनंद की अनुभूति कर सकें। चतुर्थ, संस्कृत के महत्वपूर्ण श्लोकों को कंठस्थ करने की प्रेरणा इस स्तर पर भी दी जाए, ताकि वे मातृभाषा के माध्यम से अपने वार्तालाप में आवश्यकता पड़ने पर अपनी बात की संपुष्टि में वे एवं वाणी को प्रभावोत्पादक बनाने की दृष्टि से संस्कृत के श्लोकों का उद्धरण दे सकें। पंचम, संस्कृत साहित्य के सरल अंशों को मातृभाषा में अनुवादित करने की क्षमता प्रदान करना, जिससे वे जन समुदाय को संस्कृत साहित्य के अमृत का पान करा सकें। षष्ठ, मातृभाषा के सरल अनुच्छेदों एवं सामान्य वाक्यों को संस्कृत के अनुवादित करने की योग्यता प्रदान करना। सप्तम, सरल विषयों पर संस्कृत भाषा में संक्षिप्त निबंध के रूप में कुछ वाक्य लिखने की क्षमता प्रदान करना। अष्टम, यदि संभव हो तो संस्कृत में कुछ सरल वाक्यों में बोलने की क्षमता प्रदान करना, जिससे वे अभीष्ट अवसरों पर सरल रीति से संस्कृत भाषा में कुछ वाक्य शुद्ध रूप से बोल सकें। यहाँ पर यह ध्यान देने की बात है कि संस्कृत में बोलने की क्षमता प्रदान करना संस्कृत शिक्षण का मध्य स्तर पर उद्देश्य नहीं बनाया गया। वर्तमान परिस्थितियों में यह संभव भी नहीं है। अनेकानेक विषयों के जाल में फंसे हुए छात्र से यह आशा करना कि वह संस्कृत में शुद्ध प्रभावोत्पादक मधुर एवं रमणीय ढंग से बोल सकेगा ठीक नहीं है। इसकी कोई आवश्यकता भी नहीं है। आज संस्कृत जनसाधारण की बोलचाल की भाषा नहीं है और किसी को भी समाज में प्रत्येक अवसर पर संस्कृत बोलने की आवश्यकता नहीं प्रतीत होती। यह भी ध्यान देने की बात है कि तीसरे एवं पांचवें उद्देश्यों में संस्कृत के सरल साहित्य का उल्लेख किया गया है। इस दृष्टि से पंचतंत्र हितोपदेश, वाल्मीकि रामायण, महाभारत तथा कालिदास की रचनाएं अत्यधिक महत्वपूर्ण समझ पड़ती हैं। भारवि, माघ आदि को तो इस स्तर पर समझना भी कठिन है। उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य। उच्च स्तर पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित होने चाहिए। प्रथम, सरल एवं कठिन सभी प्रकार के गद्य खंडों को उचित विराम एवं उच्चारण सहित पढ़ने की योग्यता उत्पन्न करना। द्वितीय, सभी प्रकार के श्लोकों का अभीष्ट लय के अनुसार पाठ करने की योग्यता उत्पन्न करना। तृतीय, संस्कृत के अगाध साहित्य का अवगाहन करने की क्षमता प्रदान करना। चतुर्थ, भाषा एवं साहित्य के प्रति अनुसंधानात्मक दृष्टिकोण प्रदान करना। पंचम, संस्कृत साहित्य का मातृभाषा में अनुवाद करने की क्षमता प्रदान करना। षष्ठ, मातृभाषा के सभी प्रकार के वाक्य सांचों को संस्कृत में अनुवादित करने की योग्यता उत्पन्न करना। सप्तम, आवश्यकता अनुसार उचित अवसरों पर संस्कृत भाषा में बोलने की क्षमता प्रदान करना। अष्टम, संस्कृत भाषा में पत्र लेखन, निबंध लेखन, संवाद प्रेषण आदि की योग्यता उत्पन्न करना। उपर्युक्त विवरण को ध्यान से देखने पर पता लगता है कि संस्कृत भाषा को पढ़ाने के उद्देश्य निम्न स्तरों पर भिन्न अवश्य हैं, किंतु मूल रूप में सभी भाषा के कौशलों और साहित्य के आनंद से संबंधित हैं। किसी भी भाषा को पढ़ाने के अग्रलिखित मूल्य उद्देश्य होते हैं। प्रथम, बोलना। द्वितीय, पढ़ना। तृतीय, सुनना। चतुर्थ, लिखना। वस्तुतः हम किसी भी भाषा को इसलिए पढ़ते हैं जिससे कि हम अपने भावों को दूसरों तक पहुंचा सकें और दूसरों के भावों को ग्रहण कर सकें। इस दृष्टि से भाषा के मूल में केवल दो उद्देश्य ठहरते हैं। प्रथम, विचारों की अभिव्यक्ति। द्वितीय, विचारों को समझना। भावाभिव्यक्ति दो प्रकार से हो सकती है, प्रथम बोलकर, द्वितीय लिखकर। इसी प्रकार विचार ग्रहण भी दो प्रकार से हो सकता है, प्रथम मौखिक रूप से व्यक्त विचारों को सुनकर, द्वितीय लिखित रूप से व्यक्त विचारों को पढ़कर। इसलिए ऊपर भाषा के चार उद्देश्यों का उल्लेख किया गया है। इन चारों उद्देश्यों के अंतर्गत भाषा संबंधित अनेक क्रियाओं का ज्ञान कराना आवश्यक हो जाता है। इनमें कुछ क्रियाएं पहले आनी चाहिए, कुछ बाद में। इसलिए विभिन्न स्तरों पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्य विभिन्न बताए गए हैं। इन चारों मूल उद्देश्यों को भाषा संबंधी चार कौशल भी कहा जाता है। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से आरंभ में भाषा के चारों उद्देश्यों के अंतर्गत सरल क्रियाएँ रखी गई हैं, बाद में कुछ कठिन क्रियाओं का समावेश किया गया है। इस स्थल पर संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों एवं मातृभाषा तथा विदेशी भाषा अंग्रेजी के शिक्षण के उद्देश्यों में अंतर भी देख लेना उचित होगा। शीर्षक, संस्कृत शिक्षण एवं मातृभाषा शिक्षण के उद्देश्य। जिस भाषा को बालक अपने माता पिता से सुनता है और जिसे वह अनायास ही सीख लेता है, उसे मातृभाषा कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में बालक अपने माँ बाप से ब्रिज, अवधी तथा जनपदी भाषाएं सीखता है, किंतु अब इन भाषाओं में साहित्य सृजन की धारा मंद व रुद्ध हो गई है। उत्तर भारत की सर्वमान्य साहित्य समृद्ध एवं सर्वप्रयुक्त भाषा अब हो चुकी है वह हिंदी है। अतः उपर्युक्त बोलियों की उसे शिक्षा न देकर हिंदी की शिक्षा दी जाती है और हिंदी ही उसकी मातृभाषा कही जाती है। जनपदी भाषाओं ने हिंदी को समृद्ध किया है। इस प्रकार हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं बिहार की जनता की मातृभाषा हिंदी है और इन प्रदेशों को हिंदी भाषी प्रदेश कहा जाता है। मातृभाषा को बालक घर पर सीखता रहता है और जब वह कक्षा एक में प्रविष्ट करता है तब वह उसे मातृभाषा का पर्याप्त ज्ञान हो जाता है। प्रारंभिक विद्यालय में वह 5 वर्ष तक मातृभाषा का अध्ययन करता है और माध्यमिक विद्यालय तक जाते जाते वह मातृभाषा का बहुत ज्ञान प्राप्त कर लेता है, किंतु संस्कृत के विषय में यह नहीं कहा जा सकता। संस्कृत शिक्षण की दृष्टि से जूनियर हाई स्कूल की कक्षाएं प्रारंभिक स्तर की कक्षाएं हैं और छात्र को इस स्तर पर संस्कृत को दूसरी भाषा के रूप में सीखना होता है। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा का माध्यम मातृभाषा है, अतः बालक को मातृभाषा का जितना ज्ञान हो सकेगा उतना ही ज्ञान संस्कृत के विषय में नहीं हो पाएगा। इस प्रकार की आशा भी नहीं करनी चाहिए। इसीलिए तो संस्कृत के बोलने एवं लिखने को संस्कृत शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य मध्य स्तर पर नहीं माना गया है। मातृभाषा एवं संस्कृत दोनों के शिक्षण में पठन की योग्यता महत्वपूर्ण है। पठन के कौशल का विकास दोनों भाषाओं के शिक्षण से होगा। मातृभाषा शिक्षण में व्यापक अध्ययन का द्रुत पाठन का जितना महत्व होगा उतना महत्व संस्कृत शिक्षण में नहीं होगा, किंतु गहन अध्ययन के लिए पठन का महत्व संस्कृत में अपेक्षाकृत अधिक होगा। संस्कृत शिक्षण में बोध का विशेष महत्व है। पढ़कर अर्थ ग्रहण करना भाषाओं में महत्वपूर्ण है, किंतु मातृभाषा में केवल अर्थ ग्रहण को ही महत्व नहीं दिया जा सकता। उसमें अभिव्यक्ति या भाव प्रकाशन का भी विशेष महत्व है। लिखकर या बोलकर आत्म प्रकाशन की क्षमता प्रदान करना मातृभाषा शिक्षण का महत्वपूर्ण उद्देश्य है, जबकि संस्कृत शिक्षण में अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास उतना महत्वपूर्ण नहीं है जितना अर्थ ग्रहण की योग्यता का विकास। बालक के जीवन में मातृभाषा का अधिक महत्व है और संस्कृत के शिक्षण में उनका मातृभाषा विषयक ज्ञान संपुष्ट होगा, अतः संस्कृत शिक्षण के उद्देश्यों में अनुवाद को महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। संस्कृत शिक्षण एवं अंग्रेजी शिक्षण के उद्देश्य। माध्यमिक विद्यालयों में बालकों को आजकल अंग्रेजी अनिवार्य रूप में पढ़नी पड़ती है। अंग्रेजी भारतवर्ष में अनेक कारणों से अभी भी विद्यमान है, इसीलिए किसी अन्य विदेशी भाषा को यहाँ प्रोत्साहन नहीं मिल पाता। अंग्रेजी एवं संस्कृत दोनों को माध्यमिक विद्यालयों में बालक की दूसरी भाषा के रूप में पढ़ता है, किंतु अंग्रेजी विदेशी भाषा है, अतः इसके उद्देश्यों की तुलना संस्कृत के उद्देश्यों से नहीं की जा सकती। अंग्रेजी की प्रकृति ही भिन्न है। इसमें कर्ता के पश्चात तुरंत ही क्रिया आ जाती है और कर्म बाद में रखा जाता है, तथा क्रम में अंतर आने पर अर्थ का अनर्थ हो जाता है, जबकि संस्कृत के विषय में ऐसी बात नहीं है। संस्कृत में प्रत्येक पद विभक्ति युक्त होता है, अतः क्रम भेद अनर्थ नहीं हो सकता। अंग्रेजी एक विश्लेषणात्मक भाषा है, जबकि संस्कृत संश्लेषणात्मक। विश्लेषणात्मक भाषा में प्रत्यय तथा विभक्ति शब्द के साथ संयुक्त न होकर पृथक लिखे जाते हैं। उदाहरणार्थ अंग्रेजी में हम लिखते हैं, देयर वॉज अ टॉल सामली ट्री ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी। इस वाक्य में टॉल सामली ट्री बैंक गोदावरी मुख्य शब्द हैं और ए ऑन द ऑफ क्रियात्मक शब्द। मुख्य शब्द का स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनका स्वतंत्र रूपेण कुछ अर्थ हो सकता है, किंतु क्रियात्मक शब्दों का ना तो स्वतंत्र अस्तित्व होता है और उनका स्वतंत्र रूपेण कोई अर्थ होता है। इन शब्दों का अर्थ मुख्य शब्दों के संदर्भ में होता है। ऑफ का अर्थ जैसा प्रायः बताया जाता है का की के सब जगह नहीं हो सकता। He died of cholera में of का अर्थ से हो गया है। To का अर्थ प्रायः को बताया जाता है, किंतु friend to me या PA to minister में to शब्द का अर्थ दे रहा है। तो 10 to 5 o'clock में कम या शेष का अर्थ दे रहा है और from आगरा to दिल्ली में तक का अर्थ दे रहा है। यही हाल विल, वुड, शैल, शुड, मस्ट, कैन, कुड आदि क्रियात्मक शब्दों का भी है। वे क्रियात्मक शब्द अंग्रेजी में पृथक रूप में लिखे जाते हैं और जिस स्थिति में होते हैं वैसे